आयु डॉक्टर मानसी के साथ डिलीवरी रूम में थी और वो वहां अबॉर्शन करवाने के लिए आई थी। आरफ को भी उसके इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अयान के साथ डिलीवरी रूम में जा चुका था। वहीं आयु की अबॉर्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा चुका था। लगभग 2 घंटे बाद आयु को होश आ गया था। उसे सब कुछ याद था कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। सब कुछ याद आते ही आयु के आंखों से आंसू का कतरा बह गया और उसने अपने पेट पर हाथ रखा। आई हेट यू आरफ खलाना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आयु रोते हुए बोली। आयु का चेहरा दूसरी तरफ था, तभी उसके कानों में आरफ की आवाज़ पड़ी। बट आई हेट यू मोर मिसेस खुराना। आरफ की आवाज़ सुनकर आयु ने चौंकते हुए दूसरी तरफ देखा तो वहाँ डॉक्टर मानसी सिर झुकाए खड़ी थी। उसके पास में आरफ खड़ा था जो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। आरफ के पास में अयान था और उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे। आयु ने वापस अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। आरफ को वहाँ देखकर आयु ने रुंधे गले से कहा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। आयु की बात सुनकर आरफ ने आइज रोल की और फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आरफ ने सिर हिलाकर कहा, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, मुझे बिना पूछे तुम हर बार अपनी मनमानी करती हो और फिर अपने डिसीजन का जिम्मेदार मुझे ठहराती हो। सुबह से सबसे कहे जा रही हो कि वही होगा जो आरफ चाहता है। अरे कभी तुमने पूछा भी है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैंने पूरे दिल से सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए तुम्हें ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की परमिशन दी थी। खुद को तैयार कर रहा था, इसके लिए थोड़ा तो टाइम दो यार, और मुझसे बिना पूछे तुम यहाँ आ भी जैसे सकती हो। आरफ की बातों से उसका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। आयु ने आरफ के चेहरे की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं आरफ, तुमने आने में देर कर दी। यही बात पहले प्यार से बैठकर समझाते तो आज हमारे बच्चे जिंदा होते। आरफ ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आयु के पास बैठ गया। उसने आयु का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सब ठीक है मिसेस खुराना, तुम भी, हमारे बच्चे भी, और फॉर्चुनेटली हमारा रिश्ता भी। अगर तुम्हारी बेवकूफियाँ ऐसी ही रहीं तो हाँ मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन तुम जानती हो मैं भी आरफ खुराना हूँ, अपनी चीज़ों को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। आरफ ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर आयु की आंखों में चमक आ गई। उसने दूसरी तरफ पलटकर मानसी की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मानसी ने हल्का मुस्कुराते हुए बताया, जितना तुम अबॉर्शन को लेकर परेशान थी उतना ही हम थे। तुम्हें बेहोश तो कर दिया था पर हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। जैसे तैसे करके खुद को तैयार किया तो डॉक्टर सिंघानिया और मिस्टर खुराना यहाँ पर आ गए। बस तभी से तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर मानसी के बाद अयान ने कहा। हर छोटी से छोटी बात आकर पहले मुझे बताती हो और इतना बड़ा डिसीजन खुद ले लिया। यहाँ ना हम में से किसी को भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। सोचो दादी को और तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सबकी बातें सुनकर आयु की नज़रें झुक गईं। उसने उन्हीं झुकी नज़रों से कहा, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना वरना सब फिर से मुझे डांटेंगे। मैं सुबह आरफ से बात करने के लिए इतना एक्साइटेड थी और वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। आयान समझ गया था कि सुबह आरफ ने आयु से ठीक से बात क्यों नहीं की होगी। उसने आरफ की तरफ देखा तो आरफ ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। आरफ ने आयु को पकड़कर उठाया और फिर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा मैंने बात नहीं की तो तुम तो कर सकती थी ना। अपनी बेवकूफ़ी में अगर दोनों बच्चों को खो देती तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती। होश में आते ही तुमने मुझे तो कह दिया कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्या खुद से प्यार कर पाती फिर तुम? आई एम सॉरी आरफ, यकीन मानो मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, आयु ने सुभगते हुए कहा। फिर उसने डॉक्टर मानसी की तरफ देखा तो वो बोली, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस्टर खुराना, ये तैयार नहीं थी और इतना रो रही थी, इस वजह से हम चाहकर भी बेबीज़ को अबॉर्ट नहीं कर पाए। जहाँ जान को ज़्यादा ख़तरा होता है वहाँ हम भी मजबूर हो जाते हैं, वरना हम समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ में सभी पेरेंट्स के इमोशंस जुड़े होते हैं। आरफ ने मानसी की बात पर हामी भरी और फिर आयु की तरफ देखकर कहा, जाओ जल्दी से चेंज कर लो, हम घर पर चलकर बात करते हैं। घर जाने के बाद तुम मुझे डांटोगे तो नहीं ना, आयु ने मासूमियत से पूछा। आरफ ने अपनी भौहें उठाकर जवाब में कहा, तुम्हें क्या लगता है मिसेस खुराना, मुझे तुम्हें डांटना चाहिए या नहीं? आरफ को टालने के लिए आयु ने कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर वो अयान की तरफ देखकर बोली, अयान तुम भी हमारे साथ चलना। मिसेस खुराना, अयान को अपने साथ लेने से तुम मेरे सवालों से और गुस्से से बच नहीं पाओगी। वन मोर थिंग, अयान घर तक साथ चल सकता है लेकिन हमारे बेडरूम में तो साथ नहीं होगा ना, आरफ ने सख्त आवाज़ में कहा। आरफ भले ही सबके सामने कुछ कह ना रहा हो लेकिन उसकी बातों से आयु समझ गई थी कि उसे आरफ का गुस्सा झेलना ही होगा। आयु उठकर डिलीवरी रूम के चेंजिंग रूम में चली गई। आयु की दूसरी तरफ जाते ही डॉक्टर मानसी ने कहा, मिस्टर खुराना आप उन पर गुस्सा नहीं कर सकते। वो इमोशनली पहले से ही काफी वीक फील कर रही हैं। उन्हें प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। इतने दिनों तक आपको पता नहीं था, इसलिए वो आपके सामने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती होगी, पर अब आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। डोंट टीच मी डॉक्टर, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपनी वाइफ को कैसे रखना है, आरव ने डॉक्टर मानसी की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। फिर वो आगे बोला, बात तो यहाँ आपसे भी होगी डॉक्टर, बिना मेरी परमिशन के आप उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे यहाँ ला भी कैसे सकती हैं? जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों का कॉन्सेंट ना हो, तब तक आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का अबॉर्शन नहीं कर सकती हैं। ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। आरव जिस लहजे में बात कर रहा था, उससे मानसी को घबराहट होने लगी। उसने प्लीडिंग आइज से अयान की तरफ देखा, तो अयान ने बात को संभालते हुए कहा, वो खुद यहाँ डॉक्टर है, इसलिए उसके मामले में रूल्स रेगुलेशंस को साइड में रख दिया जाता है। आप डॉक्टर मानसी को कुछ मत कहिए, वो वही कर रही थी जो आयु ने कहा होगा। जो भी बात होगी घर चलकर करते हैं। तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो, आरव ने आयान की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा। वो सब आपस में बात कर रहे थे, तभी आयु बाहर आ गई। उसके आते आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करना मेरा फर्ज है, तो उसमें आप में से किसी को बीच में बोलने का हक नहीं है। आरव आयु को बाहर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो काफी धीरे चल रहा था, लेकिन उसने आयु का हाथ कसकर पकड़ रखा था। इससे आयु समझ गई कि उसे आरव के गुस्से का सामना करना ही होगा। आरव ने आयु का अबॉर्शन होने से तो रुकवा लिया था, लेकिन वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। आरव आयु को लेकर घर जा रहा था। हालांकि उसे डॉक्टर मानसी और अयान ने पहले ही समझाया था कि वो आयु के साथ प्यार से पेश आए, इस वक्त उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। आरव ने उनके सामने आयु को कुछ नहीं कहा और फिर उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर आया। आरव का बर्ताव देखकर आयु समझ गई थी कि वो गुस्से में है, इसलिए गाड़ी में बैठते ही आयु ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी आरव, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। आई प्रॉमिस आगे से कुछ भी करने से पहले तुमसे पूछूंगी।
मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे बस तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। आयु, अगर आज तुम अबॉर्शन करवा लेती तो फिर क्या होता? आरव ने सीधे सीधे पूछा। आरव का सवाल सुनकर आयु की नजरें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा कि अगर मैं ये करूंगी तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरव ने आयु की तरफ देखकर नामे सिर हिलाया और फिर कहा, कुछ भी ठीक नहीं होता, उल्टा सब बिगड़ जाता। तुम मुझसे नफरत करने लगती, मैं तुमसे गुस्सा होकर तुमसे दूर चला जाता, फिर तुम्हें खुशी मिल जाती क्या? कल तक तो इन बच्चों के लिए तुम मुझे डिवोर्स तक देने के लिए तैयार थी और आज इनको मारने के लिए तैयार हो गई। प्लीज मुझे बार बार मत कहो, मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे घर पर लेकर चलो, आयु ने धीरे से कहा। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ऐसी हालत में आरव आयु को डांट भी नहीं सकता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आयु को घर ले जाने लगा। उसने अपनी तरफ से आयु को आगे कुछ नहीं कहा, तो वहीं आयु भी शीशे से बाहर की तरफ देख रही थी। खुराना मेंशन आते ही आयु गाड़ी से बाहर निकली और सीधे अंदर जाने लगी। आरव अभी तक बाहर खड़ा था, वो आयु को अंदर जाते हुए देख रहा था। आयु की तरफ देखते हुए आरव ने खुद से कहा, मतलब अभी भी तुम्हें अपनी जिद नहीं छोड़नी है, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम इन बच्चों को संभाल पाओगी, ये सब मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, लगता है अब सब मुझे ये संभालना पड़ेगा, तुम्हें, तुम्हारे मूड स्विंग्स और इन बच्चों को भी। उसके बाद आरव ने अयान को कॉल किया। उसने कॉल पर अयान से कहा, तुम कितने भी बिजी क्यों ना रहो, लेकिन अब से 24 घंटे उसके आसपास रहोगे। आई डोंट ट्रस्ट हर। उसने जानबूझकर ये डिसीजन नहीं लिया था। आपको सुबह सच का पता चला तो आप उसके साथ रूड बिहेव करने लगे। मैंने आपसे कहा था जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप इस हालत में उसके साथ रूड कैसे हो सकते हो? अयान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ से भी इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। अयान की बात का जवाब देने से पहले आरव कुछ पल रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, आई विल नॉट लाई, हाँ ये सच है कि अनुष्का की मौत का सच जानने के बाद मैं आयु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं उससे नफरत नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे दिल में ये चल रहा था कि अगर उसे सच का पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। मैं उससे नफरत कर ही नहीं सकता, मेरे लिए किसी भी चीज़ से बढ़कर उसके लिए अपना प्यार है। देखो, तभी उसकी हर मनमानियाँ प्यार से झेल रहा हूँ। आज उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये तो हम सही टाइम पर आ गए, वरना अगर वो अबॉर्शन करवा लेती तब भी मैं क्या कर लेता, मुझे उसके साथ रहना ही पड़ता। आरव के दिल में जो भी था उसने बिना छुपाए सब कुछ अयान को बता दिया। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखूंगा, पर आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आज की बात को लेकर आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। वैसे ही वो इमोशनल ज्यादा है और प्रेगनेंसी टाइम में और ज्यादा इमोशनल हो गई है। आपको मेरी फ्रेंड का ध्यान रखना होगा भाई, अयान बोला। अयान आयु को लेकर आरव से ज्यादा प्रोटेक्टिव था। आरव ने अयान की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ ठीक है, उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव मत रहो कि मुझे भी जलन होने लगे, मेरी वाइफ है वो। इतना कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। अंदर जाते हुए आरव ने खुद से कहा, ये प्यार भी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। जिस चीज़ पर मुझे इस लड़की पर गुस्सा करना चाहिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
कोशिश करना मिसेस खुराना कि अपनी गलतियों को थोड़ा कम कर सको, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करते करते थक जाऊं। इस बार आरव सच में सीरियस था। आयु की हालत की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन ये बात उसके लिए भुलाना मुश्किल था कि आयु उसकी परमिशन के बिना अबॉर्शन कराने चली गई थी। रात के लगभग 12 बजे के करीब छवि सिंघानिया अकेली सिंघानिया मेंशन में थी। जब से आरव का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो एजाज खान के कॉन्टैक्ट में ना के बराबर थी। इस वक्त वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही थी जो इन दिनों काफी डाउन चल रहा था। छवि अपने रूम में बैठकर पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट पढ़ रही थी। फाइल्स पढ़ते हुए छवि ने धीरे से कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की हालत कुछ खास नहीं चल रही है। अगर हम इसी तरह लॉस में चलते रहे तो एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी कंपनी को फिर से खड़ा करने में एक ही शख्स मेरी हेल्प कर सकता है और वो है आरव। लेकिन वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? मुझे आरव के साथ अपने रिलेशन सही करने हैं, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि खुद के लिए भी। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस ग्रो होने लगे हैं। शायद ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा था। हम दोनों के बीच जो भी हुआ हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरी पहली औलाद, जिसे मैंने हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। बोलते हुए छवि की आंखें नम होने लगी थी। अचानक उसे खांसी आई तो वो दौड़कर वॉशरूम में गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। खांसने वक्त उसने अपना हाथ मुंह के आगे लगाया और फिर हाथ धोने के लिए आगे बढ़ाया तो उस पर खून था। अपने हाथ पर खून देखकर छवि घबराकर लड़खड़ा गई।